नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। के चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा जल्द। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्र संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत और म्यांमार एक दूसरे के अनुभव और क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। और विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से और बेल्जियम का जर्मनी से। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हैदराबाद स्थित राजभवन के मैदान में एक सादे समारोह में श्री राव के अलावा मोहम्मद महमूद अली ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 119 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के लिए समय से पूर्व कराए गए चुनावों में टीआरएस को दो तिहाई से अधिक बहुमत मिला है। इस अवसर पर श्री राव ने कहा कि पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है तथा मुख्यमंत्री के नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। श्री गांधी ने आज नई दिल्ली में कहा कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय करने के लिए विचार विमर्श का दौर चल रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक और कांग्रेस के प्रदेश इकाई के प्रभारी ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने आज पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर नव निर्वाचित विधायकों से कल हुई बातचीत की पूरी रिपोर्ट सौंपी और उन्हें ताजा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने बताया कि आज शाम तक विधायक दल के नेता के नाम पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। इस बीच सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से आज नई दिल्ली में अलग अलग मुलाकात की। अब जल्दी ही विधायक दल के नेता का नाम सामने आने की आशा है। जितेंद्र द्विवेदी के साथ सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
उधर मिजोरम में श्री जोरमथंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार को शनिवार को शपथ दिलाई जाएगी। कल शाम आइजोल में श्री जोरमथंगा के नेतृत्व में पार्टी शिष्टमंडल की राजभवन में राज्यपाल के राजशेखरन के साथ बैठक में यह फैसला किया गया। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में पकड़ मजबूत कर ली है। पार्टी ने ग्राम पंचायत की 1950 सीटें जीती हैं। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 1150 सीटें मिली हैं। जिला परिषद की 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। असम गण परिषद 8 सीटों पर आगे चल रही है। राज्य में 26,000 से ज्यादा सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितताओं और कुछ अन्य मुद्दों की वजह से हंगामा हुआ। दो बार के संक्षिप्त स्थगन के बाद सदन की फिर बैठक शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे के बारे में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वामदलों, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद और अन्य सदस्य भी उठकर शोर मचाने लगे। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य भी कावेरी नदी पर बांध बनाने के विरोध में और कावेरी थाले के किसानों के जीवन की रक्षा के सवाल तथा तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य राज्य पुनर्गठन कानून 2014 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वित्तीय पैकेज दिए जाने और शिवसेना के सदस्य अयोध्या में मंदिर बनाने की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन में कर्नाटक से लोकसभा के नए सदस्य बी वाई राघवेंद्र ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उधर राज्यसभा में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके सदस्यों के तमिलनाडु में कावेरी थाले के किसानों को संरक्षण देने की मांग के कारण सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तेलुगु देशम पार्टी के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ये सदस्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य को मिलने वाली सभी सुविधाएं दिए जाने की मांग कर रहे थे। इन सदस्यों ने विशाखापट्टनम में रेलवे जोन की स्थापना की भी मांग की। संसद पर हुए हमले के शहीदों को राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन शहीदों ने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर हुए हमले में अपने जीवन का बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन परिसर में इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज, अरुण जेटली तथा राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किये। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
2001 में आज ही के दिन 5 आतंकवादी संसद भवन परिसर में घुस आए थे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। लंबे समय तक चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान संसद सुरक्षा सेवा के 2 कर्मी, दिल्ली पुलिस के 5 जवान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला कांस्टेबल शहीद हो गए थे। इस हमले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का 1 माली भी शहीद हो गया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कायराना हमले के दौरान शहादत देने वालों की बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों का साहस और उच्च आदर्श सभी भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। इंटरपोल ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रूपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया है कि इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर यह रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने चौकसी के दावों का खंडन करते हुए इंटरपोल को सितंबर में ठोस सबूत दिए थे। चौकसी और उसकी कंपनियों ने बैंक से धोखाधड़ी करके एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी, फिर जनवरी के पहले सप्ताह में देश से भाग गया। उसने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के सीबीआई के आवेदन के खिलाफ इंटरपोल से अपील की थी। सूत्रों ने बताया है कि चौकसी ने दलील दी थी कि राजनीतिक साजिश के तहत उसके खिलाफ ये मामले उठाए गए हैं। चौकसी ने भारत में जेलों की हालत और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए थे। रेड कॉर्नर नोटिस एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट होता है, जिसके तहत इंटरपोल अपने सदस्य देशों से अनुरोध करता है कि भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया है। विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका में आग्रह किया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और 2 अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर श्री फडणवीस से जवाब मांगा है। इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने श्री सतीश यूकी की इस आशय की याचिका खारिज कर दी थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज सहित सभी भगोड़े अपराधियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले पुलिस इस मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी को गिरफ्तार कर चुकी है। बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले की पड़ताल कर रहा है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि उन्नत तकनीकी से निजता और नियमन के क्षेत्रों में नई चुनौतियां सामने आई हैं। श्री खरे मनोरंजन और मीडिया उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार और साहित्यिक चोरी के मुद्दों पर नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री खरे ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में 30% वृद्धि हुई है, इसमें हर वर्ष 1.5 लाख और रोजगार जुटाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग को साहित्यिक चोरी से बचाना सरकार की प्राथमिकता है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए पायरेसी का मुद्दा थोड़ा जटिल है, क्योंकि हमें मालूम है कि कई साइट्स हैं जो नियमित रूप से पायरेटेड सामग्री दिखाती हैं। इसमें हम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि अगर जरूरी हो तो इन साइट्स को ब्लॉक करने के लिए कानून में बदलाव किया जा सके।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज म्यांमा में यांगून में 5वें उद्यम भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय उद्योग परिसर और म्यांमा के संघों के परिसंघ की यूनियन ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सम्मेलन मुख्य रूप से लघु और मझोले उद्यमों पर केन्द्रित है। दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और दोनों देश एक दूसरे के अनुभव और क्षमताओं का लाभ ले सकते हैं।
Through our infrastructure projects, we are enhancing connectivity between our countries. And through understandings and agreements, we are facilitating land border crossing for enhancing trade and tourism. We need to complement our ongoing efforts and urgently so with a motor vehicles agreement. This will open new possibilities for progress and prosperity for people living along the border.
राष्ट्रपति ने म्यांमा से भारत की प्रमुख परियोजनाओं से लाभ उठाने का आग्रह किया।
इंडिया इज टुडे नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट आल्सो टेक्नोलॉजी फाइनेंस बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस इनोवेशन एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस। वी हैव अंडरटेकन टू ट्रांसफॉर्म अवर इकोनॉमी थ्रू एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स Port led industrial development and digital connectivity IVs. Our Make in India, Digital India, Skill India and Startup India flagship programs are creating new business values.
इससे पहले राष्ट्रपति ने सवेरे भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर की मजार पर जाकर फूल चढ़ाए। वे नगर के प्रसिद्ध काली मंदिर में प्रार्थना करने भी गए। फ्रांस के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जीन यूएस ली ड्राइन अपने मंत्रालय के शिष्टमंडल के साथ कल भारत की दो दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। श्री ड्राइन कल मुंबई जाएंगे, जहां वे राज्य के अधिकारियों से मिलेंगे और फिल्म टेलीविजन और पर्यटन उद्योग के जाने माने लोगों से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और फ्रांस के मंत्री ड्राइन 15 तारीख को नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। श्री ली ड्राइन स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्रीलंका में संसद को भंग करने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का बहुप्रतीक्षित फैसला आज दोपहर बाद 4 बजे सुनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 7 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी कर ली और अब सभी पक्ष मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को हल किए जाने के बारे में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भुवनेश्वर में विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। आज के पहले क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मैच जर्मनी से शाम 4:45 से शुरू होगा। आकाशवाणी से पहले क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल शाम 4:40 से और दूसरे मैच का शाम 6:55 से राजधानी चैनल और एफएम रेनबो पर सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में फिर से वर्षा होने और ऊंचाई वाले इलाकों में सामान्य बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग आज वाहनों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात अधिकारियों ने बताया है कि यात्री और माल ले जाने वाले वाहन राजमार्ग के कुछ स्थानों पर फंसे हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। के चंद्रशेखर राव ने आज दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्र संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और म्यांमा एक दूसरे के अनुभव और क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। और विश्व कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना नीदरलैंड से और बेल्जियम का मुकाबला जर्मनी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।